सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुस्कान मेहरा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ऑन पेज नंबर 89। लेट अस बिगिन। डिड यू नो दैट इंडिया हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम्स? हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस? There are inscriptions on stones and copper, palm leaf records and scriptures as evidences of the historic origins of learning in India. Today, we follow an education system in which learning takes place through syllabus, curriculum, textbooks and assessment practices. Have you ever thought what these were like in the past? Introduction. You must have heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit parts of India from early times. To them, India was a land of wonder, the fame of Indian culture, wealth, religions, philosophies, arts, architecture, as well as its educational practices has spread far and wide. The education system of ancient times is regarded as a source for the knowledge, traditions and practices that guided and encouraged humanity. हम सब ने सुना ही होगा कि बहुत से यात्री दूसरी जगहों से भारत में आकर भारत के क्लाइमेट यानी भारत के मौसम और भारत के कल्चर के बारे में पढ़ते और सुनते थे। उनके लिए इंडिया एक रहस्य का देश था। इंडिया के कल्चर, उसकी धन दौलत, उसके रिलीजन्स, उसकी फिलॉसफी, उसकी आर्ट, आर्किटेक्चर और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस भी इतनी दूर दूर तक फैली थी, इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। उस समय का एजुकेशन सिस्टम एक नॉलेज का सोर्स माना जाता था। उससे हम अपनी ट्रेडिशन और पुरानी प्रैक्टिसेस सीखते थे और दुनिया में मानवता का प्रचार करते थे। नेक्स्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेद ऑनवर्ड्स आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. The system focused on the moral, physical, spiritual and intellectual aspects of life. It emphasized on values such as humility, truthfulness, discipline, self-reliance and respect for all creations. Students were taught to appreciate the balance between human beings and nature. Teaching and learning followed the tenets of Vedas and Upanishads, fulfilling duties towards self, family and society, thus encompassing all aspects of life. Education system focused on both learning and physical development. In other words, the emphasis was on healthy mind and healthy body. You can see that the education in India has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary to life. ऋग्वेद के समय से हमारा पुराना शिक्षा का शास्त्र इतना ज्यादा इवॉल्व हुआ है, इतना ज्यादा बड़ा है समय के हिसाब से, और ये इंसान के पूरे तरह के डेवलपमेंट पे फोकस करता है, यानी कि ना सिर्फ एकेडमिक बट इंक्लूडिंग ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट दैट इज नीडेड फॉर ए ह्यूमन माइंड, इन सब पर फोकस करता था हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों चीजों को पोषित करता था। पुराना एजुकेशन सिस्टम मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को सींचने में विश्वास रखता था। वो ऐसे मूल्यों पर विश्वास रखता था जैसे विनम्रता, सच्चाई, खुद पर विश्वास करना और दूसरों का आदर करना, उन सारी क्रिएशन का जो भगवान ने धरती पर बनाया। स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता था कैसे इंसानों और धरती यानी नेचर में कितना बड़ा एक बैलेंस एस्टैब्लिश्ड है, जो कि हमें मेंटेन करना सिखाया जाता था। पढ़ना, पढ़ाना और पढ़ना दोनों वेद और उपनिषद की गाइडलाइंस पे किया जाता था, जिसमें सिखाया गया है कि हर इंसान की उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति और उसकी सोसाइटी के प्रति एक ड्यूटी होती है, और इससे हम जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को फुलफिल कर पाते हैं। एजुकेशन सिस्टम उस समय का फिजिकल डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों पर डिपेंड करता था, यानी कि वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जो एक इंसान के ना सिर्फ ही दिमाग को हेल्दी बनाता था पर हेल्दी बॉडी पे भी फोकस करता था. सोर्सेज ऑफ एजुकेशन. द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद्स एंड धर्मसूत्रास. मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायना एंड पतंजलि. द राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रीटीज ऑफ चरक एंड सुश्रुता वर ऑल्सो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ लर्निंग. डिस्टिंक्शन वॉज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन शास्त्रास एंड काव्यास. Sources of learning were drawn from various disciplines such as itihas, that is history, anviski, logic, mimamsa, interpretation, shilpa shastra, architecture, arthashastra, polity, varth, that is agriculture, trade, commerce and animal husbandry, and dhanurvidya, that is archery. यानी कि हमारे जो education के उसमें sources क्या होते थे ये list किए गए हैं. तो ancient समय में education पूरी तरीके से वेदों, ब्राह्मणास, उपनिषद और धर्म सूत्र पर निर्भर करता था. हम आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायना और पतंजलि के नाम सुने होंगे. इनकी लिखी हुई बातें और चरक और सुश्रुत जैसे मेडिकल साइंस के ज्ञाता उस समय के, जिन्होंने अपने समय के आगे के हिसाब से बहुत काम किया है, उनकी बनाई हुई रचनाओं पर पढ़ाई होती थी और अलग अलग सोर्सेस थे लर्निंग के. शास्त्र और काव्य में डिफरेंस था, यानी कि शास्त्र से हम लोग डिसिप्लिन सीखते थे और काव्य यानी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव लिटरेचर को सिखाना. यानी एक तरफ डिसिप्लिन भी सिखाया जाता था लेकिन इंसान को अपना इमेजिनेशन और क्रिएशन, क्रिएटिविटी कैसे एक्सप्लोर करना है ये भी सिखाया जाता था. सोर्सेज ऑफ लर्निंग इतिहास यानी हिस्ट्री होती थी, लॉजिक होता था, इंटरप्रिटेशन होता था, आर्किटेक्चर, पॉलिटी एक्सेट्रा, एवरीथिंग वाज टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल टीचिंग द स्टूडेंट्स. एजुकेशन वाज होलिस्टिक इन एवरी सेंस, यानी हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को टच अपॉन किया जाता था और एक पूरी तरह का इंसान का डेवलपमेंट होता था. सिर्फ एक चीज नहीं, वो हर चीज के बारे में सीखता था. Physical education too was an important curricular area and pupils participated in krida, yani games, recreational activities, vyayam, prakra, that is exercises, dhanurvidya, archery for acquiring martial skills and yoga sadhana, training the mind and the body among others. The gurus and their pupils worked conscientiously together to become proficient in all aspects of learning, yani ki पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को भी उतना ही महत्व दिया जाता था. गेम्स, धनुर्विद्या, उसके अलावा मार्शल स्किल्स, योग, सबको उतना एम्फेसिस किया जाता था पढ़ाते वक्त. और गुरु और उनके शिष्य दोनों साथ में लर्निंग के सारे एस्पेक्ट्स को सीखते थे और सब में उच्च बनने की कोशिश करते थे. इन ऑर्डर टू असेस पीपल्स लर्निंग, शास्त्रार्थ यानी लर्नर डिबेट्स वर ऑर्गेनाइज्ड. पीपल्स एट एन एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पीपल्स. देयर आल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग, लाइक यू हैव ग्रुप पीयर वर्क. उस समय जैसे आज हमारे यहाँ एग्जाम्स होते हैं, उस समय जब आपको स्टूडेंट्स ने क्या सीखा ये जज करना होता था, उसके लिए शास्त्रार्थ ऑर्गेनाइज किया जाता था जिसे लर्नर डिबेट्स कहा जा सकता है. यानी डिबेट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे बच्चों के बीच में और उससे चेक किया जाता था कि उन्होंने कितने अच्छे से जो सिखाया गया है वो सीखा है. इसके अलावा जो सीनियर्स होते थे वो अपने जूनियर्स को पढ़ाते थे और साथ ही साथ पीयर लर्निंग का जो हमारे यहाँ आज ग्रुप वर्क का कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ भी एग्जिस्ट करता था. नेक्स्ट इज एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अ वे ऑफ लाइफ. In ancient India, both formal and informal ways of education system existed. Indigenous education was imparted at home, in temples, pathshalas, tolls, chatuspadis and gurukuls. There were people in homes, villages and temples who guided young children in imbibing pious ways of life. Temples were also the centers of learning and took interest in the promotion of knowledge of our ancient system. Students went to viharas and universities for higher knowledge. Teaching was largely oral and students remembered and meditated upon what was taught in the class. एंशियंट इंडिया में दो तरह की लर्निंग होती थी, दो तरह का एजुकेशन सिस्टम होता था, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. बेसिक एजुकेशन घर में सिखाई जाती थी, उसके अलावा मंदिरों में, पाठशालाओं में और गुरुकुल में. यहाँ पर बेसिक एजुकेशन सिखाई जाती थी, यानी कि जो हम लोग स्कूल्स में सीखते हैं। फिर ऐसे लोग होते थे घरों में, गांव में और टेम्पल्स में, जो छोटे बच्चों को जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना सिखाते थे। इसके अलावा मंदिर भी टेम्पल्स और सेंटर्स ऑफ लर्निंग कहा गया है, वहां पे भी लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और टेम्पल्स अपनी एंशियंट सिस्टम की नॉलेज को प्रमोट करते थे। उसके बाद आगे की एजुकेशन यानी हायर नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स विहारात या यूनिवर्सिटीज जाते थे, और उस समय ज्यादातर पढ़ाई जो होती थी वो रिटन ना होकर बल्कि ओरल होती थी, और स्टूडेंट सब कुछ याद करते थे। और मेडिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंस था, क्योंकि याद करने के बाद वो मेडिटेट करते थे ताकि वो अपने दिमाग में वो बनाए रख सके जो उन्होंने सीखा है। पेज नंबर 92, गुरुकुल्स, also known as ashrams, were the residential places of learning. Many of these were named after the sages. Situated in forest, in serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in Gurukuls. Women too had access to. Were the residential places of learning? Gurukuls, also known as ashrams, were the residential places of learning. Many of these were named after the sages. Situated in forests, in serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in Gurukuls. Women too had access to education during the early Vedic period. Among the prominent women Vedic scholars, we find references to Maitreyi, Viswambhara, Pala, Gargi, Lopamudra, to name a few. Gurukul, जिन्हें आश्रम भी कहा जाता था, वहां पर लोग, वहां पर स्टूडेंट्स रहकर विद्या अर्जित करते थे। यानी जैसे आज हम स्कूल जाकर वापस लौट आते हैं, उस तरह नहीं, बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं बोर्डिंग स्कूल्स की तरह गुरुकुल्स में बच्चों को भेज दिया जाता था, और जब वो कंप्लीट अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते थे तब वहां से लौट कर आते थे। तो वो अपने गुरु और गुरु माता के साथ ही रहते थे और फेलो स्टूडेंट्स के साथ। उन गुरुकुल्स का नाम उन ऋषियों पर रहता था जो वहाँ विद्या दान करते थे। फॉरेस्ट में ये गुरुकुल्स हुआ करते थे। बहुत ही शांत और सुलझा हुआ वातावरण होता था। 100 से ज्यादा भी मात्रा में स्टूडेंट्स वहाँ पर साथ में गुरुकुल में रहते थे, और औरतों को भी एजुकेशन का एक्सेस था, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड तक। यानी कि वैदिक पीरियड के दो पार्ट्स होते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक पीरियड में औरतें यानी गर्ल स्टूडेंट्स भी एजुकेशन ले सकती थी, लाइक एजुकेटेड हो सकती थी, बट लेटर वैदिक पीरियड में उनसे ये उनका पोजीशन नीचे होता गया और एजुकेशन उतना इजी नहीं था विमेन के लिए और गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। और वैदिक स्कॉलर्स में कुछ नोटेबल विमेन स्कॉलर्स जो है उनका नाम मैत्रेयी, विश्वाम्भरा, अपाला, गार्गी, लोपमुद्रा है। Next paragraph. During that period, the gurus and their shishas lived together, helping each other in day-to-day life. The main objective was to have complete learning, leading to a disciplined life and realizing one's inner potential. Students lived away from their homes for years together till they achieved their goals. The gurukul was also the place where the relationship of the guru and shish strengthened with time. While pursuing their education in different disciplines like history, art of debate, law, medicine, etc., the emphasis was not only on the outer dimensions of the discipline, but also on enriching inner dimensions of the personality. उस समय यानी कि गुरुकुल के वक्त जब शिष्य गुरुकुल में रहा करते थे तो गुरु और शिष्य साथ रहते थे और एक दूसरों को उनकी दिनचर्या में मदद करते थे। वहां पर रहने का मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे मूल मंत्र ये था कि एक स्टूडेंट को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सिखाना और अपने अंदर का असली पोटेंशियल यानी अपने आप को एक तरह से पहचानना सिखाया जाता था। स्टूडेंट्स अपने घर से दूर रहते थे कई सालों तक ताकि वे अपने गोल्स अचीव कर सकें और एक अच्छी जगह पहुंच सके। इसके अलावा वहां गुरुकुल में स्टूडेंट और गुरु के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो भी स्ट्रेंथन करने का टाइम था। एजुकेशन जब स्टूडेंट सीखते थे अलग अलग फील्ड्स में, जैसे हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन, सिर्फ उनके बाहरी एनरिचमेंट के लिए नहीं, लेकिन ऑल्सो एनरिचिंग द इनर डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। मतलब एक स्टूडेंट का सिर्फ बाहरी आवरण नहीं सुधारा जाता था, सिर्फ बाहर से उसे पढ़ा लिखा नहीं बनाया जाता, उसके अलावा उसके अंदर ऐसे वैल्यूज भी डेवलप किए जाते थे जिससे वो एक अच्छा इंसान बन सके। नेक्स्ट इज एनी मोनास्ट्रीज विहारास वर सेट अप फॉर मॉन्क्स एंड नन्स टू मेडिटेट डिबेट एंड डिस्कस विद द लर्नड फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अराउंड दीज विहारास अदर एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप्ड विच अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, Korea, Tibet, Burma, Ceylon, Java, Nepal and other distant countries. तो monks और nuns जो होते थे, जो अपनी normal गृहस्थ life से अलग हो चुके होते थे और एक kind of celibacy वाली life जीते थे, वो monasteries और विहार set up करते थे। Usually ये Jain या Buddhist traditions में देखा गया है भारत में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो monks और nuns जहाँ पे होते हैं, लेकिन monasteries और विहारास most of all Buddhist रिलीजन में देखा गया है यहाँ पर। इसके अलावा इवन हिंदू कल्चर हैड दिस प्रैक्टिस ऑफ लाइक गुरुज एंड इंटेलेक्चुअल पीपल सेटिंग अप देयर मोनास्ट्रीज और काइंड ऑफ गुरुकुल्स विच इम्पार्टेड एजुकेशन। उसके अलावा ये मॉन्क्स और नन्स मोनास्ट्रीज विहारा सेटअप करते थे जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर मेडिटेट करते थे, डिबेट करते थे ऑन द टॉपिक्स विच वर डिबेटेबल, और जिसके बारे में उनको क्वेश्चंस होते थे वो पुट अप किए जाते थे, उसके बारे में बहुत लंबे लंबे डिस्कशन और डिबेट होते थे। इससे वो लोग ज्ञान अर्जित करते थे। इन विहार या मोनास्ट्रीज के अगल बगल दूसरे भी शिक्षा के बड़े बड़े सेंटर्स डेवलप होने लगे थे जहां पर दूसरे देशों से, जैसे चाइना, कोरिया, तिब्बत, जावा, नेपाल एक्सेट्रा, ऐसी कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स आते थे और एजुकेशन अर्न करते थे। नेक्स्ट इज विहारास एंड यूनिवर्सिटीज। The Jataka Tales, accounts given by Xuan Zhang and Ai Qing, Chinese scholars as well as other sources tell us that kings and society took an active interest in promoting education. As a result, many famous educational centers came into existence. Among the most notable universities that evolved during this period were situated at Takshila, Nalanda, Vallabhi, Vikramshila, Udhantapuri and Jagadalla. These universities developed in connection with the Viharas. Those at Benares, Navadeep and Kanchi developed in connection with temples and became centers of community life in the places where they were situated. Jataka tales, yani wo tales jo Buddhist religion mein mani jati hai, unki tales hoti hai, yani unki kahaniyan hoti hai, folklore hoti hai, usko Jataka tales kaha jata hai. Usme accounts likhe gaye hain Xuan Zhang aur Ai Qing dwara, ye Chinese scholars hain jo ki batate hain ki us samay ke raja aur society kitna zyada importance deti thi education ko और बहुत ज्यादा प्रमोट करती थी एजुकेशन को। उसके अलावा इसकी वजह से बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स यानी शिक्षा के बहुत सारे गढ़ मतलब सामने आने लगे, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल तक्षशिला, नालंदा, वाल्मीकि, विक्रमशिला, उदांतपुरी, जगदल्ला, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट था उस समय की सोसाइटी में, इसके कारण और भी बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स सामने आने लगे। ये यूनिवर्सिटीज उस विहार के कनेक्शन में निकल, जैसे विहारास जहाँ पे मॉन्क्स और नन मोनास्ट्री सेटअप करते थे, जहाँ पे वो लोग डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे ऑन एंड गेन्ड नॉलेज, इनके रिलेशन में एजुकेशन सेंटर्स इनके अगल बगल डेवलप होते थे और उनका सेंटर ये विहारास होते थे। इसके अलावा बनारस, नवदीप और कांची में जो एजुकेशनल सेंटर्स डेवलप हुए वो टेम्पल्स के अराउंड हुए और उनके सेंटर टेम्पल्स हुआ करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, दीज इंस्टीट्यूशन केटर्ड टू द नीड्स ऑफ एडवांस्ड लेवल स्टूडेंट्स। सच स्टूडेंट्स जॉइंड द सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग एंड डेवलप्ड देयर नॉलेज बाय म्यूचुअल डिस्कशंस एंड डिबेट्स विद रेनाउंड स्कॉलर्स। तो फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन तो होम्स और टेम्पल्स में स्टार्ट होता है, इसके अलावा फिर स्टूडेंट्स को गुरुकुल भेजा जाता है। उसके बाद अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलर्स बनना चाहते हैं या जिन्हें एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंशियंट टाइम्स में, वो ऐसे विहारास और ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेंटर्स को ज्वाइन करते थे जहाँ पे ये रेनाउंड स्कॉलर्स प्रेजेंट थे, जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स रहते थे, उनसे डिस्कस और डिबेट करके वो अपने आगे की नॉलेज गेन करते थे। नेक्स्ट, नॉट ओनली दिस, देयर वर आल्सो ओकेजनल समनिंग बाय अ किंग टू अ गैदरिंग इन विच द स्कॉलर्स ऑफ द कंट्री ऑफ वेरियस विहारास एंड यूनिवर्सिटीज वुड मीट, डिबेट एंड एक्सचेंज देयर व्यूज। सिर्फ ये नहीं था कि वो इंस्टीट्यूशंस में ही जाकर आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, इसके अलावा उस समय के राजा और उस समय की सोसाइटी इन लार्ज इतनी ज्यादा एजुकेशन प्रो थी, यानी एजुकेशन को इतना ज्यादा सपोर्ट करती थी, इतना प्रमोट करती थी कि किंग्स भी ऐसे ओकेजनल गैदरिंग सामने करते थे, यानी ऐसे एक ओकेजनल इवेंट्स रखे जाते थे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते थे और ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो आकर साथ में डिस्कशन और डिबेट करते थे और अपने मतों को एक्सचेंज करते थे, अपने व्यूज एक्सचेंज करते थे, जिससे एक एजुकेशनल माहौल भी फैलता था और ये भी दिखाता था कि उस समय की सोसाइटी किस तरह एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देती है। नेक्स्ट इज, इन दिस सेक्शन वी विल गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ टू यूनिवर्सिटीज ऑफ द एंशिएंट पीरियड। अब इसके बाद हम लोग दो यूनिवर्सिटीज पुराने एंशिएंट टाइम की डिस्कस करेंगे जो कि आज के समय यूनेस्को द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करी जा चुकी है। पहली है तक्षशिला और तक्षशिला। In ancient times, Takshashila was a noted center of learning, including religious teachings of Buddhism for several centuries. It continued to attract students from around the world until its destruction in the 5th century CE. It was known for its higher education and the curriculum comprised the study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science, and 18 silpas or arts. Takshashila became famous as a place of learning due to its teachers' expertise. Among its noted pupils were the legendary Indian grammarian Panini. He was an expert in language and grammar and authored one of the greatest works on grammar called Ashtadhyayi. Jivak, one of the most renowned physicians in India, ancient India, and Chanakya, also known as Kautilya, a skilled exponent of statecraft, both studied here. Students came to Takshashila from Kashi, Kosal, Magad, and also from the other countries in spite of the long and arduous journey they had to undertake. So Takshashila, purane samay mein, ek bahut hi important center of learning tha, shiksha ka gadh tha. Isme रिलीजियस टीचिंग्स होती थी बुद्धिज्म के बारे में, मतलब बुद्धिज्म की टीचिंग्स होती थी। कई सौ सालों, कई शताब्दियों तक बुद्धिज्म की टीचिंग यहाँ पे होती थी और यहाँ सिर्फ यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स नहीं आते थे बल्कि पूरे दुनिया के स्टूडेंट्स यहाँ पर शिक्षा अर्जित करने आते थे। तब तक कि जब तक इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इसे खत्म नहीं कर दिया गया, जो जिसकी डेट है 5th century CE। यहाँ पर हायर एजुकेशन यानी आगे की विद्या, यानी आगे की एजुकेशन दी जाती थी, यानी हायर एजुकेशन दी जाती थी और एंशियंट स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस और ये सब सिखाया जाता था स्टूडेंट्स को, ये करिकुलम में उनके ये था। तक्षशिला बिकेम फेमस एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर्स एक्सपर्टीज, यानी तक्षशिला इतनी अच्छी एक यूनिवर्सिटी इसलिए बनकर उभरी क्योंकि यहाँ के शिक्षक बहुत ज्यादा उच्च थे, यानी कि यहाँ के टीचर्स बेस्ट माने जाते थे, तो दे प्रोड्यूस्ड इवन ग्रेटर एंड नॉलेजेबल स्टूडेंट्स। यहाँ के बहुत कुछ नोटेड प्यूपल्स में से एक हैं इंडियन ग्रामारियन पनीनी। पनीनी एक इंडिया के ग्रामारियन है, यानी कि उन्होंने ग्रामर पे एक बुक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। जीवक, जो कि एक बहुत बड़े बहुत रिनाउंड फिजिशियन थे, वो भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, वो भी यहाँ पे पढ़े थे और यहाँ तक्षशिला में काशी, कोसल, मगध से स्टूडेंट्स आते थे और यहाँ तक कि दूसरी कंट्री से भी स्टूडेंट्स आते थे। भले ही यहाँ पे आने की जो रास्ता था वो काफी कठिन था, उसके बाद भी दूर देशों से यहाँ पर स्टूडेंट्स शिक्षा अर्जित करने आते थे। नेक्स्ट इज, देयर इज अ बॉक्स इन विच सम फैक्ट्स आर गिवन। तक्षशिला वॉज एन एंशियंट यूनिवर्सिटी विच इज नाउ इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। अभी तक्षशिला पाकिस्तान, जो अभी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान देश बन गया, अभी तक्षशिला वहां पे सिचुएटेड है। वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर हो चुकी है, 1980 में इसे डिक्लेयर किया गया था। और इस ये इतनी ज्यादा फेमस मोस्टली इसलिए क्योंकि चाणक्य यहाँ के स्टूडेंट हैं जिनका बहुत ही फेमस अर्थशास्त्र है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने मिड 19th century में इसके रूइंस को खोजा था। रोल ऑफ द टीचर, टीचर्स हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टू डिजाइन देयर सिलेबस। व्हेन द टीचर वाज सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स द कोर्स कंक्लूडेड। He would admit as many students as he liked and taught what his students were keen to learn. Debate and discussions were the primary method of teaching. Teachers were assisted by their advanced level students. तो जैसे आज के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक प्रॉपर सिलेबस डिजाइंड होता है जिसे टीचर्स को फॉलो करना होता है, वहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी का ऐसा केस नहीं था। वहाँ पे जो शिक्षक होता था वो अपना करिकुलम खुद डिजाइन करता था और उसे जो मन करता था वो पढ़ाता था। और उसके बाद टीचर कोर्स तब खत्म करता था जब वो सेटिस्फाई हो जाता था कि स्टूडेंट्स ने उनके स्टूडेंट्स ने शिक्षा अर्जित कर ली है। और मेन मोड्स ऑफ टीचिंग थे डिबेट और डिस्कशन, यानी उस समय ज्यादातर पढ़ाई का जो तरीका था वो वार्तालाप पे डिपेंड करता था। मतलब लोग बातचीत करके, यानी ओरल ट्रेडिशंस ऑफ लर्निंग होते थे, तो डिबेट और डिस्कशन में इन्वॉल्व होकर स्टूडेंट्स लर्निंग करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा व्हेन जान जान विजिटेड इट वाज कॉल्ड नाला एंड वाज सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड। The Chinese scholars Ai Xing and Zhuang Zhang visited Nalanda in the 7th century CE. They have given vivid accounts of Nalanda. They have noted that as many as 100 discourses happened on a daily basis in a variety of disciplines through the methods of debate and discussions. Zhuang Zhang himself became a student of Nalanda to study Yoga Shastra. He has mentioned that the Chancellor of Nalanda, Shilabhadra, was the highest living authority in yoga. Students, we will study Nalanda University in detail in the part 2 of this chapter and all the rest of the chapter in the next part. Thank you, students.
Suno kitab se sunne ke liye aapka dhanyawad.